श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रास दर्शन की सुनिताय गौर सुंदर की निताय गौर हरि प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण से पाठ तृतीय स्कंद 25वां अध्याय श्लोक संख्या 23। मदाश्रया कथा मृष्टः शुण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नेतान् मद्गतचेतसः। मदाश्रयः कथा स्मृष्टः शुण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधातापा नैतान् मद्गतचेतसः। मदाश्रयः कथा मृष्टा शुण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गतचेतसः। हरे कृष्ण। शब्दार्थ मताश्रयः मेरे विषय में, कथाः कथाएं, मृष्टः आनंदप्रद, शुण्वन्ति सुनते हैं, कथयन्ति बोलते हैं, च तथा तपन्ति कष्ट झेलते हैं, विविधाः नाना प्रकार के, तापः भौतिक क्लेश, नयतान उनको नहीं, मद्गत चेतसः जिनका चित्त मुझ में लगा हुआ है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। मेरे निरंतर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कीर्तन तथा श्रवण में संलग्न रहकर साधुगण किसी प्रकार का भौतिक कष्ट नहीं पाते, क्योंकि वे सदैव मेरी लीलाओं तथा कार्यकलापों के विचारों में निमग्न रहते हैं। तात्पर्य, इस संसार में नाना प्रकार के क्लेश है, शारीरिक तथा मानसिक। अन्य जीवों द्वारा पहुंचाए जाने वाले और प्राकृतिक उत्पादों से मिलने वाले, किंतु साधु ऐसी कष्टप्रद परिस्थितियों से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण भावनामृत से भरा रहता है। फलतः वह भगवान के कार्यकलापों के अतिरिक्त अन्य किसी की चर्चा नहीं करता। महाराज अम्बरीश भगवान की लीलाओं के वर्णन में अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलते थे। वाचांसि वैकुंठ गुणानि वर्णने, वे अपनी वाणी को सदुपयोग केवल भगवान की महिमा गायन में करते थे। साधुगण सदैव भगवान या उनके भक्तों के कार्यकलापों के विषय में सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वे कृष्ण भक्ति से पूरित रहते हैं, अतः उन्हें भौतिक क्लेश की विस्मृति हो जाती है। सामान्य बद्ध जीव भगवान के कार्यकलापों को विस्तृत कर देने के कारण सदैव चिंताओं एवं भौतिक क्लेशों से पूर्ण रहते हैं। दूसरी ओर, चूँकि भक्तगण सदैव भगवान की कथाओं में लगे रहते हैं, अतः वे संसार के कष्टों को भूले रहते हैं। ओम अज्ञानन्तिमिदान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सकलजातं सहगणं रघुनाथं मृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं स नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंद के 25वां अध्याय, जिसमें भगवत भक्ति का वर्णन हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें देवहूति और कपिल प्रसंग है। भगवान कपिल देव अपने माता देवहूति के प्रश्न के उत्तर देते हैं। यही अध्याय के शुरुआत में माँ देवहूति ने अपने प्रश्न रखी थी, आप पढ़ चुके होंगे कपिल भगवान के सामने, और उनको अच्छी तरह से ये पता था कि उनके पुत्र भगवान साक्षात है, तो इसलिए उन्होंने अपने पुत्र के सामने भगवान मान करके उनका प्रश्न रखी। प्रश्न ही था कैसे उनके इस अवस्था से कैसे उद्धार पाए। तो भगवान कपिल माताजी को उपदेश देते हुए जो योग बताते हैं वो भक्ति योग ही है। तो भक्ति योग कहाँ से मिलता है, साधुओं से मिलता है, साधु लक्षण आदि सब बता करके, तो अभी साधु लक्षण सर बताएंगे 25 श्लोक ना, हाँ 25 श्लोक। तो आज के श्लोक में वो कहते हैं कि माताजी आपके जो टेंशन है, भौतिक संसार के दुख है, आप उससे बचना चाहते ना, बस टू मच, बहुत हो गया। क्योंकि अभी उनके पास उनके पतिदेव नहीं थे, केवल एक ही बेटा था, बाकी उनके बेटी लोग सब शादी हो गया था, और उम्र भी बढ़ चुका था, वृद्धावस्था हो चुका था। वृद्धावस्था हो जाने से तो तकलीफ और बढ़ जाता है ना। आधी व्याधि, व्याधि मतलब शारीरिक कष्ट, आदि मतलब मानसिक कष्ट, तो ये दोनों ताप और बढ़ जाता है इस उम्र में। तो इस स्थिति में ये उन उससे बचने के लिए उपाय, तो भगवान कपिल सिंधा कहते हैं कि मदाश्रया गुणास पुष्टा, कहते हैं कि जो मेरे आश्रय लेते हैं, मद आश्रया, भगवान का आश्रय लेना। देखिए हम लोग प्रत्येक को ये अच्छी तरह से अभिज्ञता है, कुछ भी तकलीफ होता है हम किसी के आश्रय में जाते ना, नहीं डॉक्टर के पास तो जाते ही हैं, आसपास में जो होम्योपैथिक एलोपैथिक आयुर्वेदिक कोई भी हो इमीडिएट रात में फ़ोन भी करेंगे, पूछेंगे, चले जाएंगे, भले पैसा देने में देना पड़े, कुछ भी शरण तो लेते ना उनका शारीरिक क्लेश के लिए कुछ प्रकार की, और मानसिक क्लेश के भी मानसिक डॉक्टर के पास जाते हैं और कहीं के पास जाते हैं, हर प्रकार से धन आदि के अभाव हो बैंक में जाते हैं और किसी के पास जाते हैं करोड़, मैंने इस दुनिया में प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति अगर देखा जाए तो जितने समय जागृत रहता है प्रति क्षण क्षण में किसी का शरण में जाता है, अधिकांश तो कोई नहीं है तो अपना मन के शरण में रहता है, अपने मनमानी करता है और भी और अगला नहीं। तो हम कुछ चीज प्राप्त करने के लिए, कुछ से बचने के लिए, दुख से निवृत्त होने के लिए हमेशा किसी ना किसी के शरणागत होते ही हैं, आश्रय लेते हैं किसका, किसी का आश्रय लेते हैं, बोलते हैं इससे हमारा काम बन जाएगा। लेकिन भगवान इस श्लोक में स्पष्ट कहते हैं कि अगर समस्त प्रकार क्लेश विविधा तापहा, क्लेश से अगर आप बचना चाहते हैं, राहत जान पाना चाहते हैं, तो ये दुनिया प्रकार के आश्रय लेने से कुछ नहीं होगा, बढ़ेगा लेकिन घटेगा नहीं, क्योंकि जिनके पास जाते हैं वो बेचारे फंसे हुए हैं, तुझे क्या हेल्प करें, तो डॉक्टर के पास है डॉक्टर बचेगा क्या, वो भी तो मरे, कोई नहीं बचा सकते इस संसार में, कोई नहीं है, केवल एक ही आश्रय है जिनके पास जाने से तुझे वास्तविक राहत मिलेगा। खुल करके शुरुआत में तो मत आश्रय, मत आश्रय, जब तक तुम मेरा आश्रय नहीं लो तब तक तू कितने दुनिया में घूम जाओ कुछ भी कर लो नेवर, नहीं। तो इसे सबसे पहले माँ को बताया कि माँ मत आश्रय, आज तो मुझे आया पूछने के लिए, मैं खुल के बताता हूं मेरे आश्रय के बिना तो संसार में किसी भी प्राणी अपने तकलीफ से अपने ताप से बच नहीं सकता, सीधा बोलते मत आश्रय। अरे आपके आश्रय लें क्या, कैसे लें, हम लोग बैठे हैं सुन समझ गए भगवान का, भगवान के जाकर पकड़े चरण पकड़े बोले वो सुनेगा भी नहीं बोलेगा भी नहीं, कैसे आश्रय लें, मन में सबको प्रश्न उठता है। ये तो देवहूति माता का महासौभाग्य था, उनके बेटे के रूप में भगवान थे, बेटे को गोद में ले ले उनको पर पकड़ ले, हमारा तो ऐसा कुछ है नहीं, हम क्या करेंगे, सुन लिए भागवत से भाई मत आश्रय, भगवान बोलते मेरे आश्रय में जाने से दुख क्लेश मिटेगा, तो कैसे नहीं उनका आश्रय, तो भगवान ये बात जानते थे, ये जो भगवान कहते हैं वो जानते थे, मैं केवल माँ के लिए नहीं कहता हूँ, मैं तो जुगपत प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए कहता हूँ, तो इसलिए भगवान ने कहते मदाश्रया कथा नुष्टा, मेरे आश्रय कैसे लेना होगा, मेरे कथा को सुन करके, यही है भगवत आश्रय। भगवान की अति सुंदर सुंदर वीर्यवती लीलाएं कथाएं उनको सुनने से इसमें मदाश्रय कथा नुष्टा सुनवंती कथयंतिश्च, दो ही उपाय है भगवान की शरण, भगवान को आश्रय लेने का, सुनना और बोलना, यही देव उपाय। भगवत चर्चा, भगवत चर्चा करना है, चर्चा करने के लिए एक वक्ता एक श्रोता तो चाहिए भाई, मिनिमम दो पार्टी तो होना चाहिए। भगवान यीशु कहते हैं गीता में मत चित्त मदगत प्राण, जिनका चित्त प्राण मुझ में लगा हुआ है उनका पहचान कैसे पता है, हाउ डू यू रिकॉग्नाइज हर्ट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या उनका लक्षण है कैसे पहचानेगा, पहचानने का एक ही उपाय है, जब वो मिलेंगे कोई दूसरी चर्चा करेंगे नहीं, कथन तिश्च मांग नित्यम, मेरे विषय में बातचीत करेंगे, यही उनके लक्षण है। जो भगवत चित्त भक्त हैं उनका और कोई चर्चा नहीं होगा, एक ही सब्जेक्ट होगा भगवान और भगवान के भक्त, उसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसी को भी माता जी के सामने भगवान कहते हैं, देखिए दूसरा कोई होता तो किसी भगवान बताते हैं, माँ के सामने तो इसे बोलेंगे नहीं, सही बात बोलते हैं, बोलते हैं कि माँ मत आश्रय, मेरे आश्रय लेकर कथा सुनना कैसा है। भगवान बोलते हैं मेरे आश्रय लेकर ही कथा सुनना होगा। आप और किसी के भावना में रहेंगे और किसी टेम्पल में सोच में रहेंगे फिर कथा सुनने बैठेंगे तब नहीं होगा ना। भगवान का हो करके भगवान के सेवा करना यही विधि है। पहले भगवान को होना पड़ता। तो भगवद गीता में कई लोग पूछते हैं कभी कभी, ये बताए जी ये भगवान ने अर्जुन को क्यों बोले गीता। दृष्टि महाराज थे, विष्णुदेव भी थे, कृपाचार्य, द्रोण आदि और बड़े बड़े तपस्वी, बहुत बड़े बड़े योग्य व्यक्ति थे, ये इनको क्यों बताए अर्जुन को, और किसी को बोल सकते। कई लोग पूछते हैं, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर भगवान स्वयं दिए हैं भगवद्गीता में। भगवान स्वयं कहते हैं अर्जुन भक्तो सी में सखा चेती, तू मेरा भक्त है और मेरा मित्र है, इसलिए भक्तो सी में सखा चेती रहस्यम ही एतत उत्तमम। ये जो ज्ञान मैं तुझे बोलने जा रहा हूं ना, ये कोई ऑर्डिनरी ज्ञान नहीं है, बहुत रहस्यात्मक है। ये रहस्य को दूसरे कोई नहीं समझ सकते, केवल तपस्या करके सत्य आदि आचरण करने से, कोई नियम पालन करने से मेरे बात के रहस्य को नहीं समझ सकता। मेरे बात को रहस्य को समझने के लिए एकमात्र एक ही गुण आवश्यकता, एक ही क्वालिफिकेशन है, वो क्या होना चाहिए, मेरे भक्त होना चाहिए। मेरे भक्त हुए बिना मेरा मन के भाव कोई नहीं समझ सकता, असंभव। केवल भक्त ही मुझे समझ सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति, भगवान ठोस ठोस कर बोलते हैं, केवल भक्ति के द्वारा। तत्वतः भक्त्या माम अभिजानमा जानाति जावान जस्यास्मि तत्वतः, मेरे तत्व को जानने वाले केवल मेरे भक्त हो सकते हैं। तू मेरे भक्त हो और उसके ऊपर मन मित्र भी हो। मित्र कहने का मतलब तू रसयुक्त भक्त हो, साक्ष्य रस में वर्ष जुड़े हुए उन्नत कोटि के भक्त। तो इसीलिए ये जो मैं बात कहता हूँ उसके रहस्य को समझ पाओगे। इस श्लोक के तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान ने, गीता के वक्ता ने स्वयं बोल देता है गीता को कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे कोई डॉक्टर के पास जाते हैं और जो दवाई देता है, दवाई देते से खुद बोल देता है उसको कैसे खुराक लेना है, किससे लेना है, कौन पान पानी में लेना है कि शहद में लेना है, कैसे लेना है, चाट पर खाना है कि डाल, वही स्वयं बता देता है ना। जो दवाई देता है वही बता देता है कब कब लेना है, कैसे लेना है। ठीक इस पर भगवान जब गीता बोलते हैं वही बता देते हैं कैसे लेना है, क्या करना है, वो खुद बता देते हैं। तो भगवान खुद बताते हैं अगर कोई गीता को समझना चाहेगा सबसे पहले उनको भक्त होना पड़ेगा। बिना भक्त है छू मत गीता को भाई, धर्म रखो तो कुछ बल्ले नहीं पड़ेगा। भारतवर्ष में हम देखते हैं बड़े बड़े विद्वान पुरुष अपने ज्ञान के मान में आ करके, अब गीता तो सबसे ज्ञान की सबसे मुकुटमणि पुस्तक, उनको लेते हैं और उसमें भाष्य लिखते हैं। अनेक सैकड़ों भाष्य ऐसे हैं और उस भाष्य में पढ़ो गीता से कृष्ण नहीं है और कुछ है, गीता माइनस कृष्ण, हाउ कैन इट बी गीता। वो इसे रखा रहता कोई मतलब नहीं होता, सैकड़ों भाष्य लिखा गया ऐसे जो अधिकतर चलता है सब अन्य भाषा। प्रभुपाद जी ने जब भगवद गीता आज इट इज लिखे, वो पहले नहीं लिखे थे, विदेश में जाने के बाद एक जन ने उनको पूछा, बोला प्रभुपाद आप गीता से क्लास ले रहे हैं, हम कौन सी गीता पढ़ें। वो अंग्रेजी बात कर रही थी वो महिला। प्रभुपाद बोले अंग्रेजी में जितने गीता अभी तक है, बोले हमारे आचार्य जो भक्त हैं वो लोग सब संस्कृत में तो अपनी भाषा में लिखे हैं, कोई भक्त के गीता के भाष्य भी अंग्रेजी भाषा में है ही नहीं, है ही नहीं। तो अंग्रेजी में जितने भाषा के भाष्य गीता मिलता है वो सारे मेंटल स्पेकुलेटर है, सब अपना अपने ज्ञान के मान पर से लिखे हैं भाष्य। बोले इनसे किसी के पढ़ने से कोई पल्ले नहीं पड़ेगा आपको। बोले फिर आप रिकमेंड किसी को, बोले किसी को रिकमेंड कर ही नहीं सकता, कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं ऐसी गीता जिसमें रिकमेंड करो इसको पढ़कर आप समझ सकते हैं। तो फिर प्रभुपाद जी बोले तो सदैन व्हाट शुड, प्रभुपाद जी फिर लिखना पड़ा, प्रभु पहले नहीं लिखे थे गीता, पहले जो लिखे थे गीता तो चोरी हो गया था, तो फिर दोबारा उन्होंने लिखे भगवद गीता आज इट इज विदेश में फटाफट लिखे। क्योंकि गीता को समझने के लिए भक्ति के बिना, भक्त के बिना कोई पकड़ नहीं सकता, समझ नहीं सकता। और बाकी जो लिखे आपने ज्ञान आपने समझ के सब उसका मतलब नहीं। तो फिर प्रभुपाद जी ने लिखे, बहुत जल्दी जल्दी उसको लिखे उनके मांग के कारण। वो माता जी ने पूछ रही थी मुझे कि गीता चाहिए, मैं किसको पढ़ूँ आपका क्लास अटेंड। तो प्रभुपाद जी ने रचना किए और फिर उसको प्रिंट करा कर गीता को अवेलेबल कराए जल्दी से। तो इस गीता को आज विश्व में उन्होंने लगभग 68 में लगभग उसको रचना किए थे, 68-69 की बात है। और जब तक आज के डेट में ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल होगा, 40-45 ईयर्स बात है, उसी के अंदर पूरे विश्व में जितने भाषा है सारे भाषा में उसको अनुवादित हो चुका है। और वर्ल्ड गिनी रिकॉर्ड में उसका रिकॉर्ड है कि इतने कोई प्रकाशन नहीं विश्व में जो इतने पुस्तक प्रकाशन किए। भगवद गीता आज ही जितने प्रिंट हुआ ओनली विद इन 40 ईयर्स, हजारों साल जितने बड़े कोई नहीं किया। क्यों? क्योंकि इस गीता एक भक्त का द्वारा लिखा है, और भक्त द्वारा लिखा गीता बहुत है लेकिन अंग्रेजी भाषा में एक भक्त के द्वारा लिखा हुआ गीता एकमात्र था। और इसी को पढ़ करके हजारों नौजवान, ये हम लोग से बैठे हुए हैं सैंपल उनके, इसी को पढ़ कर बदले, नहीं तो बड़े बड़े बहुत कुछ था इसके द्वारा। तो इसलिए बिना भगवान के हुए भगवान के कोई सेवा नहीं किया जा सकता। इसलिए भगवान सबसे पहले ये बात उठाते हैं, मदाश्रय। तो मेरे बारे में सुनेंगे, बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, मेरे सेवा करोगे, पहले मेरे तो हो, मेरे हुए बिना ये नहीं हो सकता। इसलिए हम चाहते हैं कोई भी सेवा भक्त के द्वारा होना चाहिए। जो भक्त नहीं कर्मी है भगवान के नहीं है, वो और किसी के हैं, वो तो पैसा के चक्कर में आगे काम करते हैं, तो सेवा नहीं बनेगा। भगवान वो सेवा को ग्रहण करते हैं जो भगवान के भक्त होकर के उनको करते हैं। अनेक जगह रहते सामद सिंधु में अनेक जगह पर इस बात की जिक्र हुआ है। जब प्रहलाद महाराज भी कहते हैं नवधा भक्ति, इसमें भी कहते हैं अद्धा शब्द, भगवान के बनने के बाद कर सकते हैं भगवती अद्धा। बिना भगवान के हुए बिना भगवान का सेवा नहीं किया जा सकता। तो इसलिए यहाँ भी भगवान कहते हैं मद आश्रय है, मेरे आश्रय ले करके मेरे कथा सुनो और बोलो, मेरे आश्रित हो करके। मदाश्रया कथा मुष्टा सुनवंती कथयंती च, मुष्टा शब्द से कहते हैं कि मेरे आश्रय ले करके और जो मेरे आश्रय में है उन्हीं के साथ में भक्तों से, भक्तों के द्वारा, भक्तों और भगवान की कथा को अगर सुना जाए बोला जाए तो कैसा होगा, मृष्टा बड़े आनंददायक होगा। वो कथा बोलने में सुनने में बड़े आनंददायक होगा, कथा मृष्टा सुनवंती गायंती च। और जो इसी काम में लगे रहते हैं, क्योंकि माता जी ने पूछा था कष्ट से कैसे बचूं, बोले इसी काम में जो लगे रहे मेरे आश्रय लेना पड़ेगा। कैसे आश्रय लूं, आपका आश्रय कैसे लूं, जस्ट हियर सुनो मेरे बारे में, क्लास अटेंड करो। हम सभी काम करते हैं मगर क्लास में नहीं आते, बाकी सब मत आ जाते हैं। भगवान कहते हैं बाकी भाड़ में जाने दो, कुल इसी में नहीं आने तो कुछ नहीं होगा। दिस इज द ओनली प्रोसेस। हमारे भक्ति के जितने अंग है सबसे प्रथम अंग है श्रवण, वही नहीं होगा कुछ नहीं बनेगा। सचमुच अभी हम जितने यहाँ बैठे हैं जो भी कुछ जानते हैं, जो भी कुछ हमको ज्ञान है पता है और जो होने वाला है वो केवल सुन करके। तो यही हम भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं तो सवाल ही नहीं उठता। फिर तो भगवान सीधा सीधा बोलते ना, मेरे आश्रय लेने का एकमात्र तरीका है तो जस्ट हियर अबाउट मी, मेरे बारे में सुनो। सुनवंती कथयंती, सुन करके बोलो, चर्चा करो और सुनो, यही करना है। वो बड़े आनंददायक भी है, जो मेरे आश्रय लिए हैं उनको बड़े अच्छा भी लगेगा। और अगर ऐसा कोई करते इसी काम में लगे रहते हैं तो तपंती विविधा तापा, विविध प्रकार के क्लेश, तीन प्रकार के क्लेश हम जानते हैं। तो जितने प्रकार की मानसिक पीड़ा हो, शारीरिक पीड़ा हो और परिस्थिति परिवेश के द्वारा दिया गया पीड़ा हो, सर प्रकार के ताप को, ऐसा नहीं कि उनको नहीं होता, ये तो भक्त हो गए उनको ठंडी गर्मी थोड़ी लगता होगा। कई लोग शायद सोचते होंगे वो तो भक्त हो गए फिर उनको गर्मी ठंडी क्यों लगेगा, अरे ये उनको गाली गलौज मार पीटने से उनको कष्ट क्यों होगा, भक्त हो गए। कई मूर्ख लोग ऐसे सोचते भी, ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं कि उनको कष्ट नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो मेरे कथा सुनने में बोलने में मग्न रहते हैं, तो इसलिए इस प्रकार से विविधता पर विभिन्न प्रकार के कष्ट को वो झेल लेते हैं, वो झेल लेते हैं विविध प्रकार के कष्ट को वो सहन कर लेते हैं। सहन करने का उनको जो ताकत मिलता है वही श्रवण के द्वारा, मेरे कथा सुनने में बोलने में जो एंगेज हो जाते हैं, और विभिन्न प्रकार के टेंशन तो होता है, तकलीफ तो होता है, लेकिन वो उनके ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ता। तो सहन, लेकिन जो इस काम में नहीं लगा है, बाकी काम में लगा है, वो तो मर ही जाते हैं, वही तकलीफ से मर जाते, उन्हीं से मर जाते। भगवान बोलते मैं कोई दूसरा आदमी नहीं, मैं काल के रूप में हमेशा अर्जुन के सामने जब भगवान अपने विश्व रूप दिखाए, अर्जुन तो बोल रहा था नहीं 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 मैं लड़ूंगा, नहीं कुछ नहीं करूंगा। भगवान बोले तू लड़ो मत लड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं लड़ेगा तो जाओ, लेकिन ये मत सोचो कि तेरे चाचा कक्का ताऊ गुरु जो है वापस जाएंगे, ही मरेंगे सब, है कैसे मरेंगे, मैं मारूंगा नहीं, लड़ाई होगा नहीं, कैसे मरेंगे, तेरे से तो मतलब नहीं, तू लड़ या मत लड़ो तो मरेंगे, कैसे मरेंगे, युद्ध होगा ही नहीं तो कैसे मरेंगे। बोले तू ये सोचता है कि युद्ध होंगे से मरेंगे, तो ऑलरेडी मर चुके हैं, कैसे, बोले मैं मार चुका हूं उनको, तू क्या करेगा, मेरे इच्छा है उनको मरना है उसे मरना है। बोले कैसे हो सकता, बोले सैंपल देखना चाहता है, दिखा दे, बोले देख स्टेयरिंग पकड़े हुए हाथ में गाड़ी में खड़े खड़े दिखा दिए उनको, वो देखने से चश्मा पहचान पहना दिए उनको, ददामी दिव्यंग चक्षु, दिव्य चक्षु दिए उनको, चश्मा लगाए और अर्जुन ने देखा, अरे ये मेरे ड्राइवर है, वो और छोर दिखाई नहीं पड़ते, कितने लंबा चौड़ा, कितने बड़ा, कितने आदमी है, क्या हो रहा है, बाप रे बाप, बड़े बड़े रथी महारथी सब पीछे जा रहे हैं, ग्राइंडिंग हो रहे हैं। अर्जुन थर 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 कांपने लगे, ओनर सीट पे बैठे थे गाड़ी में, और ड्राइवर सीट में वहां खड़े, थर थर कांपने लगे, बेपतुष्य शरीर में, शरीर बिल्कुल थर थर कांप रहा था, हाथ जोड़कर पूछा, हु आर यू सर, हु आर यू, आप कौन हो, मुझे पता नहीं कौन हो आपको, तो मैं गलती से समझ रहा था मेरा फ्रेंड हो, नहीं 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 आप बताओ हमारी। जब बारंबार पूछा डर के मारे कांपते हुए, भगवान ने उनको बताया, काड़ो अहम काड़ो अस्मि, मैं काल हूँ, मैं काल है, व्हाट आर यू डूइंग हियर, यहाँ क्या कर रहे हैं, काल अस्मि लोक कृत प्रबुद्ध हो, सारे लोगों को सफाई करने के लिए बनाए हैं, इससे कोई नहीं बचने वाला, देख मैं क्या कर रहा हूँ। अर्जुन तो पसीना होती है डर के मारे, बोले अर्जुन डरो मत, सबको खत्म कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरे हो गए उनको मैं क्या करता हूँ। बहुपा जी ने एक उदाहरण देते हैं, बिल्ली तो सब देखे होंगे ना, बोलते बिल्ली जब उनके मुंह से चूहा को पकड़ लेता है तो चूहा क्या सोचता है, अरे बाप रे बाप, टॉयलेट पेशाब करते थर थर कांपने, उनका तो हाल गया, बोला तो मर गया और क्या है, उससे और छूटने का तो पास में पकड़ लिया मुंह में, गया मुंह में पकड़ के, बिल्ली जो चूहा को पकड़ लेता है, चूहा तो पहले मर जाता है, इतने छटछट होकर के इतने दुख मिलता है उसको, और वही मुंह से आपने छोटे बच्चे को उठा करके जब यहाँ से वहां ले जाते कैसे लेता है, हाथ में पकड़ थोड़ी लेता है, कैसे लेता है बिल्ली, वही मुंह से लेता है, वही मुंह से जब आपने छोटे सावक को बिल्ली, सावक को बिल्ली पकड़ता है तो बिल्ली के बच्चा क्या सोचता है, माँ के गोद में हूँ, सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड हूँ, बच्चे जो माँ के गोद में रहता है सबसे ज्यादा सुरक्षित रहता है ना, यही से सुरक्षित महसूस करता है, आई एम फुली प्रोटेक्टेड बाय माय मम्मी, लेकिन वही दांत से वही मुंह से पकड़ा हुआ उसको, और वही दांत से वही मुंह से चूहा को पकड़ता है, लेकिन दोनों की भावना में आकाश पाताल अंतर है, एक डर के मारे क्या हाल, और वो तो फसलस बिंदास है, माने पकड़ा हुआ है, वही बिल्ली वही मुंह वही दांत इसी से पकड़ती है, लेकिन दोनों को दोनों प्रकार के भावना प्राप्त, ठीक इसी प्रकार भगवान कहते हैं कुछ नहीं, वही हाथ पैर वाले वही, लेकिन मेरे भक्त हो गए, मेरे आश्रय ले लिया, और उनको मेरे साथ से जो संबंध अलग हो जाएगा, जो मेरे आश्रय नहीं लिए हैं उनको ताप वही, उनको वही कष्ट उनको इतने बुरी तरह से झेल कष्ट देगा, और जो मेरे भक्त होंगे वही कष्ट उनको भी होगा, लेकिन वो दूसरे प्रकार से लेंगे। तो इससे पता चल जाता है कि हम अभी तक पूरी तरह से जो कष्ट भोग करते हैं भगवान के शरण ठीक से नहीं लिए हैं, मत आश्रय नहीं हुए हैं, जितने प्रभुपाद लिखते हैं द डिग्री ऑफ सरेंडर, अपने आश्रय लेने का शरणागति का अनुपात से भगवान आपको ऋषि प्रकट करेंगे। जे यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि, जो जितने प्रकार के जैसे मेरे प्रपन्न होंगे मैं इसी प्रकार उनको भी प्रतिदान करूंगा। तो ये हमारे ऊपर है, हम किसने कितने परसेंट में भगवान के शरणागत होते हैं वो इतने प्रकार से करेंगे, इसने ठीक रेशियो से करेंगे। तो इसलिए भगवान सबसे पहले कहते मदाश्रय, और आश्रय लेने का तरीका है भगवान की कथा सुनना और इस प्रकार, और वो बड़े आनंददायक कथा भगवत कथा सुनने में। और अगर इसी काम में लगे जाते हैं तपन्ती विविधा तापहा, विभिन्न प्रकार के कष्ट यंत्रणा क्लेश कुछ नहीं होता, आराम से सहन जाते हैं। ऐसे ऐसे यंत्रणा भक्त लोग ने सोचे हैं, हम तो भक्तों कष्ट नहीं होगा, लेकिन पता नहीं इस यंत्रणा का डिस्कशन करके हमारा रोमांचित हो जाता है। हम बोलते बाप रे बाप, पितामह भीष्म कितने बड़े भक्त थे भगवान के, लगभग 2 महीना के आसपास उन्होंने सोते रहे, आरो बेड ऑफ आरोस। अगर आप लोग के पैर में कि शरीर में कहें कि कांटा चुभ जाए, 1.5 इंच वाला, 1.5 इंच छोड़ 1 इंच वाला घुस जाए और निकल ना पाए, 2-3 दिन तक आप बिजी रहे और निकल नहीं पाए, 2-3 दिन के बाद मुझे थोड़ा पक गया, कैसे टेस्ट लगता है? कभी किसी का अभिज्ञता है ना? नहीं, बाप रे बाप, ऑपरेशन करना पड़ गया, कितने दर्द कर रहा है। और पितामह भीष्म का पूरे आपाद मस्तक हर इंच इंच में आर पार था, बाण आर पार हुआ था, ऐसे नहीं कि 1 इंच 1.5 इंच वाला था, पूरा 6-6 इंच 8-8 इंच वाला पूरा शरीर से इधर घुसा था और इधर तक निकला हुआ था, आर पार था, उसी के ऊपर लेटे हुए थे, निकला ही नहीं था, 2-4 दिन तक नहीं, महीने दिन तक नहीं निकला। और कोई फास्ट एड बॉक्स लेकर नहीं गया था, उनके पास थोड़ा मलम पट्टी करते हैं, कुछ नहीं किया था। और कहाँ पड़े थे, घर में बेडरूम में या हॉस्पिटल में आईसीयू में? नहीं, युद्ध भूमि में, जहां पर हजारों लाखों डेड बॉडी पड़े हुए थे, कुछ मर चुके थे कुछ मरने वाले थे, यंत्रणा से चीख हो रहा था, रक्त की नदी बह रहा था, कटे फटे सब पड़े हुए थे, बिछे हुए थे, जहां दिन के समय महा मृत्यु युद्ध मरने वाले चित्कार, और रात के समय तो भूत प्रेत के तांडव, उनके बीच में कैसे नींद होगा, अकेले बाणों की सज्जा पर इतने दिन तक पड़े रहे। हम तो सोचते ही मर जाएंगे, सोचते मर जाना चाहते, अरे मर जाना क्या, उनको तो मर जाना हाथ की बात था, इच्छा मृत्यु था उनके पास, अब चाहे तभी मर जाए, लेकिन मरना भी नहीं चाह रहे थे। कैसे दुख झले, क्योंकि भगवान कहते हैं कि तपन्ति विविधा ताप, ये तो कष्ट कुछ नहीं, कष्ट आराम से, उनको कुछ परेशान नहीं किया, क्योंकि मेरे चिंतन में थे, क्योंकि मेरे चिंतन में थे विधाम भीष्मा, तो ये कष्ट उनको लगा ही नहीं, बड़ा आराम से कुछ नहीं लगेगा, कष्ट महसूस ही नहीं। तो इसलिए हम लोग को भगवान ने इस प्रकार सिखा दे रहे हैं कि हम लोग को अभ्यास करना होगा, भगवान के आश्रय लेने का लेना पड़ेगा, आश्रय लेने का जो तरीका है भगवान की कथा श्रवण, उसको अभ्यास करना पड़ेगा। कथा श्रवण के समय भगवान का आश्रित होकर के सुनना, भगवान को मन में हृदय में धारण करके भगवत भावना को लेकर जब कथा सुने, इस प्रकार अभ्यास करे, तो दुनिया में कितने भी कष्ट हो सके, ये जो कष्ट पितामह भीष्म का, ऐसा तो कष्ट हमको हो नहीं सकता, हम स्वप्न में सोचने कभी होगा, ये होने से पहले मर जाएंगे, हम इतने बाण के 2-4 बाण मर जाएंगे, तो हम तो इच्छा मृत्यु बिना ही मर जाएंगे, हमको जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी ये कष्ट नहीं होगा अगर हम इस प्रकार भगवत आश्रय ग्रहण करेंगे, भगवत कथा में हम अनुरक्त हो जाएंगे, कथा सुनने में लगेंगे। तो कस्मिन काले ये नाना प्रकार के क्लेश, नाना प्रकार के कष्ट हमको अभिभूत कर ही नहीं सकता है, हम झेल लेंगे उसको, सुख सुख से झेल लेंगे, कुछ नहीं होगा। चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम सुनते हैं, और एक नाम के आचार्य थे, हमेशा नाम ग्रहण करते थे, किसी को कोई कष्ट नहीं देते थे, झगड़ा झटे कुछ नहीं था, बेचारे अपना चुपचाप नाम, लेकिन इनको सहन नहीं हुआ। कुछ लोग मुसलमान तो नहीं, ब्राह्मण लोग जा कंप्लेन की काजी के पास में, ये तो आपने धर्म छोड़ कर के आया और हमारा धर्म ही खराब करता है, हरिनाम करता रहता है। इस साल लोग कंप्लेन किए, तो काजी ने कोर्ट नालिश हो गया, बोला उनको समझाया वो माने नहीं, बोले अगर शरीर को काट काट कर खंड खंड कर दो तभी मैं हरिनाम नहीं छोड़ सकूंगा। अरे तो जो मुल्ला लोग थे बहुत गुस्से हो गए, बोले उनको हैवी कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए। क्या पनिशमेंट? बोले देखते हैं। बोले उनको पूरे मार्केट में घिसते घिसते हुए कोड़े में पीटते रहना पड़ेगा। क्यों? मार्केट में घिस कर पीटेंगे ना, दुनिया के लोग मार्केट में चल देखेंगे कि ऐसे काम करने से कितने महान पनिशमेंट मिलता है, तो स्वप्न में कोई सोचेंगे नहीं फिर हरिनाम करने के लिए। लेकिन उल्टा प्रभाव पड़ा, हरदास ठाकुर को बांधा गया गले में बड़ा रस्सी और दो आदमी घिसटते रहे, शरीर में उनका कुर्ता भी था नहीं, घिसटते रहे और दो आदमी इस तरह वो दो हाथ से पकड़ कर पीट रहे थे, कंटिन्यूस पीट रहे थे। मार्केट में जो लोग देख रहे थे वो आकर बोलते थे भैया मैं खरीदने के लिए लाया था पैसा 200 रुपया, मैं आपको देता हूँ, मैं फास्टिंग करके रह जाऊँगा, छोड़ दो उसको भैया, इतने मारो मत, हमसे देखा नहीं जाता, हमसे सहन नहीं होता, इतने दारुण कष्ट में पीट रहे हम दो हाथ से पकड़ करके। तो लोग बोलते भैया तू 200 मेरे से 200 रुपया ले लो, मर जाए, मर ही नहीं रहा, हम ही मर जाएंगे, वो नहीं मरेगा। इससे कष्ट दे रहे थे 22 मार्केट प्लेस में घिसटते हुए, कंटिन्यूस पीटते रहे घिसते रहे, उनको कुछ नहीं हो रहा था, वो तो हरिनाम कर रहे थे मस्ती से, कुछ भी नहीं हुआ उनका, महसूस नहीं हुआ। जो पीट रहे थे जो देख, वो भी आश्चर्य हो रहे थे। क्यों? क्योंकि भगवत आश्रय था, हमारा आश्रय ऐसे थे कि कुछ ही नहीं महसूस हुआ उनको। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम देख सकते, हम इस प्रकार भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं, भगवान के चिंतन में नहीं रहते, लेकिन वो थे। तो कितने भी मार पड़ा, कितने भी घिसे, कुछ भी किए, कुछ उनका हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ उनका। और अंततः उनका दूसरा प्रभाव पड़ा लोगों के अंदर, यदि हरि नाम से ही शक्ति है तो क्यों ना हरि नाम है, उल्टी प्रचार हो गया और वो काजी लोग भी फिर बदल के भक्त हो गए। तो इस प्रकार इस सांसारिक क्लेश आदि व्याधि आदि से, हर एक प्रकार से कष्ट से यंत्रणा से मुक्त होने के लिए हम नाना प्रकार के आश्रय ग्रहण करते हैं। ये सब आश्रय छोड़ करके अगर केवल पूर्ण भरोसा के साथ, विश्वास के साथ भगवत आश्रय चले जाएं, सभी से काम निपट जाएगा। लेकिन हम क्यों नहीं लेते हैं कभी इतना आसान है? क्योंकि हमारा विश्वास है, थोड़ा होता है सुन करके तेरे क्लास से बाहर निकले सही में ऐसा थोड़ी है, बोलते हैं लिखा थोड़ा बोलना चाहिए, आधा परसेंट होता है विश्वास, बाकी 99.5% विश्वास नहीं होता। अगर विश्वास हो जाए तब काम इस प्रकार आश्रय कर लिया जाए। जिनके जिनके विश्वास हुआ था उनको उनका हम देखें, किसी प्रकार से उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। प्रहलाद महाराज देखते हैं, 5 साल के निहत्ता बालक था, कोई तोप कमान हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं था, और उनके विरुद्ध में पूरे त्रिलोकी विजयी महासम्राट हिरण्यकश्यप खड़ा रहा अपने फुल फोर्स के साथ, क्या क्या नहीं किया मारने के लिए उनको, कोई बाल बका नहीं करता, खुद ही मर गया। कुछ नहीं करता। क्यों? क्यों? उनके आश्रम में पूर्ण विश्वास के साथ। हमारा विश्वास नहीं होता कि सचमुच ऐसा करने से क्या होगा, करके देखो कितने कम हुआ, क्यों नहीं। हम अन्य अन्य चीज में आश्रय लेते हैं, ऐसा तो लेना ही पड़ता है, दूसरे कई प्रकार के चीजों के आश्रय में जाते हैं, केवल भगवान का आश्रय छोड़ करके। अगर पूर्ण विश्वास के साथ भगवान के आश्रय में जाए तो कष्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं, कष्ट तो होगा, दुनिया देखेंगे हंसेंगे बोले देखो क्या हो रहा है, लेकिन आप महसूस करेंगे दूसरी कुछ चीज। जब नारद ऋषि अपना कथा बताते हैं कि वो छोटे बालक थे, एक दासी के मेड सर्वेंट के लड़के थे, जो दूसरे के घर में काम करती थी शुभराणी, उनके बेटे के रूप में नारद जी आए थे, और गरीब थे उनके माँ, तो उनको कपड़ा तक नहीं पहना सकता था, सकती थी खाना पीना ठीक से नहीं दिलवाती थी। तो एक बार उस गाँव में साधु आए और साधुओं के सेवा में उनको लगा दिया गया, साधु संघ कर पाए नारद जी, उसमें उनको माला नाम मिल गया। और जब बातें करने लगे गांव के लोग चिढ़ाने में, क्या हो गया पागल, पढ़े लिखे खेलकूद नहीं करता। तो 2 या 3 दिन साधु लोग चले जाने के बाद भजन करते थे, बालक नारद उनके मां के देहांत हो गए, सब चिढ़ा हुई, देखा वाह मजा हुआ, यही कर रहा था। लेकिन भले दुनिया के लोग कुछ करे दूसरे की भावना में ले, लेकिन नाराज जी की भावना था बिल्कुल, भगवान कितनी दया है मेरे ऊपर, मैं तो सोच रहा था आपके और मेरे बीच में माँ है, लेकिन बीच में हटा दी। बोले क्यों? डायरेक्ट आना। इतने उनको भरोसा हो गया माँ के डेथ के बाद, वो सीधा उसी बचपन की उम्र से छोड़ करके चले गए जंगल। कोई आशा नहीं था कहाँ जाऊँ कहाँ रहूँ क्या खाऊँ, भगवान भरोसा में थे। और इसी भरोसा के कारण नारद जी व्यासदेव कहते व्यास, इसी विश्वास और भरोसा के कारण एक ही जन्म के बाद नेक्स्ट लाइफ में बिकम नारद, मैं नारद बन गया केवल एक ही लाइफ में, क्योंकि मैं इतने भरोसा किया। बस सीधा एक शूद्राणी पुत्र से सीधा नारद जी के पोस्ट मिला, केवल भगवत भरोसा, भगवत मदाश्रय उसी में। एक बार भगवान उनके छलक में आए थे स्वप्न में, एक दो सेकंड के लिए आए थे और चले गए थे, बस इतने से ही पूरा जीवन उन्होंने उनके भरोसा में रहे और इतने बड़े। तो इसलिए हमको कभी अविश्वास नहीं करना चाहिए कि ये सच है कि नहीं, यही सत्य है, यही केवल सत्य है, और कुछ सत्य हो ही नहीं सकता, है भी नहीं और कुछ नहीं सत्य। इस प्रकार से जीते जी सत्य को जो अनुग्रहण कर लेता है वही जीत जाता है, नहीं तो बाकी सब हम सत्य करके मानते हैं। मरने के बाद हमारे संबंधी लोग कहते हैं जब हम कान में सुनने के लिए सत्य नहीं रहता तो बोलते राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तभी कहेंगे अरे तब तुम सुन ही नहीं सकता। नहीं, ये सत्य है, हमेशा रहता है, त्रिकाल सत्य। और इसी प्रकार से कोई भगवान का आश्रय लिए, आश्रय लेने के जो उपाय भगवान की कथा दी बड़े श्रद्धा से श्रवण करे तो नाना प्रकार के कष्ट को इसी प्रकार उन्होंने झेल लेगा, हंस हंस करके कोई पता भी नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान के चिंतन रहेगा, भगवान के श्रवण में लगेगा। इसी को भगवान कहते हैं, भगवान कपिल देव ने माता देवोहिति को समझाते हैं कि माँ एक ही उपाय है, यही है कि अभी आपका टाइम हो चुका है, अब रिटायरमेंट भी ले लिया आपने, अब अभी कभी क्लास ना मिस करना, बाकी जो कुछ करना नहीं करना, नेवर एवर, दो टाइम हो तीन टाइम हो जहाँ जैसे होता है, कोई सेमिनार कोई क्लास सुबह शाम कभी ना मिस करना, इसी से ही आपका काम बन जाएगा, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये भगवान बाकी कोई उपाय नहीं बताए, मेरे आश्रम रह करके मेरे कथा सुनो, कथंती सुनंती, दैट्स इट, तेरे कष्ट सब झेल लोगे, अब बड़ा पार हो जाएगा। और हम बाकी सब करेंगे केवल क्लास में नहीं आता, इसे क्या है, चल बस, तो हमारा कैसे पार होगा हम समझ। हरे कृष्ण, किसी का कोई प्रश्न है? भगवान तो कहते हैं करना क्या चाहिए, केवल एक ही काम करना चाहिए, आकर सुनना चाहिए, है ना, आकर जो सुनते हैं उनके लिए प्रसाद भी मिलता है ना, कम मिलता है, कुकिंग भी नहीं करना पड़ता, बने बनाए मिलता है फिस्ट, केवल यही करना है, आना चाहिए टाइम पर, सुनना चाहिए। हाँ जी, ये उत्तरायण के मतलब नहीं जानते थे क्या? कोई भक्त को उत्तरायण फुतरायण की जरूरत नहीं, भीष्म पितामह को उत्तरायण की जो जो उत्तरायण की अपेक्षा किए थे वो उत्तरायण वो नहीं है जिसको आप मानते हैं, वो उत्तरा एक स्त्री थी, अयन मतलब उसका गर्भ, वो उत्तरा के अयन में जो घुसे थे वो उत्तरायण आया था, तब तक वेट कर रहे थे, है ना, नहीं वो उत्तरायण तो था ही लेकिन असली उत्तरायण ये था। बोलिए। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के बोलिए। हाँ हाँ, क्योंकि विश्वास नहीं है। क्लास है, कुछ बोलता रहता है, बकवास करता रहता है, चलो टाइम कब तक टाइम क्यों नहीं आता, कैसे विश्वास। इसीलिए कहा गया भगवान कहे कि मेरा कथा सुनना है, सुनने से पहले क्या करना है, पहले मेरा आसन मेरे हो करके सुनो। आप घर में काम में फंसे हुए हैं, वो टाइम करके ले आ गए, यही से घर आश्रय लेकर के कथा नहीं सुन पाते हैं, और कोई नौकरी का आश्रय लेकर के नहीं, और कोई बात का आश्रय लेकर नहीं, मेरे आश्रय लेकर के मेरे कथा सुनो, तब जाकर कथा का फायदा मिलेगा। यस हाँ, क्या क्या जानना चाहते हैं, उत्तरा को जानते ना नहीं। अभिमन्यु की पुत्र थी, पत्नी थी, जब उनके अंदर पांडव के दायाद वंशज थे, उसको अश्वत्थामा ने बाण मारा था, है ना नहीं, तो उसके गर्भ में शिशु को मार देने के लिए भगवान प्रवेश कर गए थे ना नहीं, उत्तरा के गर्भ में उसे बचाने के लिए, तो इसीलिए उनका नाम उत्तरायण पड़ा था। उत्तरा के अयन में प्रवेश करने के कारण भगवान के एक नाम उत्तरायण, तो उनका रिश्ता था, तो विष्णुदेव अपेक्षा करते उत्तरायण कब आएंगे, मतलब उत्तरायण आ गया, ओ अपने इष्ट देव के चिंतन में थे, इसीलिए तो अपेक्षा कर रहे थे, उनको क्या नहीं तो उनकी इच्छा मृत्यु था, कभी जा सकते, लेकिन वो उनके चिंतन में थे। नहीं दक्षिणान था, जब विष्णु पितामह थे तब दक्षिणान था, उत्तरायण आता है छह महीने, अयन मतलब एक छह मास को एक अयन कहा जाता है, जब सूर्य उत्तर दिशा पर जाता है तो उत्तरायण, सूर्य जब दक्षिण दिशा पर जाता है दक्षिणायन। ये एक्चुअली क्यों है कि देवताओं के ऊपर से है, हमारे छह महीना देवताओं के एक बारह घंटा, हमारा एक साल में उनका एक दिन होता है, जब देवतालों के रात होता है हमारा दक्षिणायन होता है, याद रहा, तो उस समय मरेंगे तो अंधार में जाएंगे कहाँ, अंधार लोक गति होगा, जब देवताओं का दिन है हम मरेंगे तो दिन में लाइट में जाएंगे, तो दिन के समय उत्तरायण है, वो जनवरी से शुरू होता है जून तक, और जून से लेकर जनवरी तक दक्षिणायन है, और जनवरी से लेकर जून तक उत्तरायण है। तो विष्णु पितामह वेट किए थे, और तो मार्गशीर्ष मास था ना, गीता युद्ध शुरू हुआ, तो वे एक डेढ़ महीना रोके, जब जनवरी महीना फिर आया तब तक भगवान ने सारे काम पूरा करके फिर आए उनके पास वापस, तब तक फिर तब तक ऐसे भी उत्तरायण हुआ था, लेकिन असली उत्तरायण आया था, उनका विष्णु पितामह ने अपना क्लास दिए फिर अपने। ऐसे कहीं भीष्म स्तुति में नहीं लिखा गया कि भीष्म पितामह ने उत्तरायण को अपेक्षा करते थे, नहीं, ये लिखा गया भागवत में कि जब भीष्म ने अपने कथा वचन किए, जब पांडव और कृष्ण उनके सामने थे और हजारों संख्या में ऋषि मुनि थे सबके सामने, भीष्म पर्व आपने कथा रखने के बाद में भगवान की स्तुति किए, जब सोचे कि मेरा हो गया अब मैं जाना चाहता हूँ, भगवान को सामने खड़े देख करके सामने सामने 12 श्लोक में बड़े जबरदस्त स्तुति किए, उस स्तुति में केवल एक प्रार्थना करते थे, रति में अस्तु अनवद्या, इसी रूप में मेरे मन लग जाए, कौन सा रूप, विजय कुटर रथ कुटुंब, ये पार्थ सारथी के रूप में मेरा मन लग जाए, पार्थ सारथी रूप मुझे मन लग जाए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस पार्थ सारथी के जो रूप में मैं जो झांकी दिखाऊं, उसी झांकी मेरे सामने मेरे हृदय में आ जाऊं, इसी में रम जाऊं, यही प्रार्थना करते करते जब उन्हें चुप हो गए उसी समय उदाहरण आ चुका था, ये बतला के बता रहा ना, समय आया हमने तब तक 1.5-2 महीना तक उन्होंने इस पर कष्ट चले ये कर। हाँ जी बोली। देखिए अपराध अगर नहीं करेंगे तो अपराध क्या है, कैसे टेस्ट कैसे चलेगा, पता कैसे चलेगा, है ना नहीं, तो थोड़ा बहुत करना चाहिए तो पता भी चले तो फिर बचेंगे उसमें, है ना। हाँ तो उनसे भी सीखेंगे अपने। हाँ हाँ सीख करके जब आपको कोई थप्पड़ पड़ेगा कितना कठिन ऐसा काम नहीं करने को मुझे मार पड़ता है, तो इसे अपराध करके जब चेंका लगेगा तो फिर हमको ही लगेगा हम नहीं करेंगे फिर ऐसा, है ना। हाँ जी, जी जी
जो बड़े बड़े गोसामीज है या सामीज है जिनको शारीरिक कष्ट होता है,
यही तो कहा गया है ये कष्ट हम देखते हैं कष्ट करके, लेकिन उनको लगता है कि वो तो महासुख में है, है ना। ये हम बुद्धों को समझता है कि कष्ट हो रहा है लेकिन उनको नहीं लगता, वो तो बोलते हैं ही एक चीज है जो मुझे। देखिए भगवान के सबसे उच्चतम भक्त जो कोई संसार में ना भूत ना भविष्य हो नहीं सकते, ये हैं गोपियाँ, और गोपियाँ में श्रीमती राधा रानी, उनका तो कोई पैरेलल हो नहीं सकता, उनका समान को हो नहीं। तो उनको 100 साल तक तड़पाए भगवान ने और 10-11 साल तो साथ में रहे, तो सुख कौन सा तड़पान में सुख। इसीलिए हमारा सिद्धांत हमारा गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में कहा गया जो सेपरेशन में जो सुख है ये मिलन में सुख कुछ नहीं, इसके सामने पास में रहने से जो सुख मिलता है उससे करोड़ों गुना सुख अलग हो जाने से मिलता है, है ना। और कुछ यस क्या करते हैं, श्रवण करते हैं, क्योंकि आप ढंग से मदाश्रय होकर श्रवण ग्रहण नहीं करते हैं, है ना। तो ऐसे सुन लेते हैं किसी मेरा ड्यूटी है थोड़ा बोलना है क्लास में आना है, जब जब मेरा मन करेगा तब आ जाऊंगा, जब जब मन करेगा नहीं आऊंगा, अपने मन मर्जी करते हैं। क्योंकि भगवान कभी तक हुए नहीं अपने, अब आपने होकर बैठे हैं, आपने होकर के सुनते, आपका आश्रय लेकर सुनते, आपके मन का आश्रय लेकर भगवान बोलते हैं इसे सुनने से कुछ नहीं होगा। सुनने से पहले कंडीशन है मदाश्रय, मेरे आश्रित हो करके तब जाकर के सुनो, तब जाकर के बोलो, तब जाकर काम बनेगा, तब कष्ट झेलने के लिए ताकत मिलेगा। नहीं तो कष्ट कैसे झेलेंगे, चूहा की तरह होंगे, बिल्ली की तरह बनना पड़ेगा। बिल्ली अपने माँ को अपने माँ मानती है तब उसको वही दांत जम जाता है तो हमको फुल्ली प्रोटेक्शन महसूस होता है, चूहा मानती थोड़ी, चूहा मानती मेरा काला खा जाएगा मुझे, इतना ही अंतर है। नहीं तो बिल्ली के मुंह सेम है, बिल्ली के दांत सेम है, प्राणी दोनों को ही मुंह से उठाता है, एक इतने डर और इतने प्रोटेक्शन क्यों, क्योंकि एक उनका नाता रिश्ता मानता है कि मेरा मम्मी है, वही बोलता है कि मेरे खा जाएगी काल है, दैट इज द डिफरेंस। तो इसलिए भगवान पहले बोल दिए तुम तेरे आश्रय छोड़ के मेरे आश्रय में रहो, फिर सुनो, फिर उसका फायदा उठाओ। ओके, हो गया। ग्रंथराज भागवत महापुराण की सामवेद भक्तवृंद की
हरे कृष्णा।